वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 7 रमजान अल मुबारक 1442 हिजरी अप्रैल की 20 तारीख सन 2021 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ नाम है मेरा दिल प्रोग्राम समराइज में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक लेकिन प्रोग्राम करेगा आपको एंटरटेन ऑल द वे टिल 11 o'clock इन द मॉर्निंग। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी बातें आपकी पसंद के म्यूजिक आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा, रमजान भी अच्छा गुजर रहा होगा, आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और भाई कल शो मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे मेरे ट्वीट से आप लोगों जो लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं उनको अंदाजा हो गया होगा आई फेल फॉर द फॉल्स अलार्म बिकॉज यस्टरडे आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग वो मैन इज गोना बी बिग। No, it wasn't. I mean, the traffic was in flow and reasonable. Yes, some shops were closed. In fact, a lot of markets were closed and all. So, मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल से सहरी के बाद कुछ थोड़ी सी नींद आई है तो वैसे ही हालात बड़े ख़राब होने हैं तो सो जाओ। मैं सो गया। अच्छा फिर कोई तकरीबन जब उठा तो मेरे ऑफिस से मैसेज आना शुरू हुआ भाई तो सब ऑफिस में बैठे हुए हैं यानी इसका मतलब ये कि हालात जो हैं वो शहर के ठीक हैं। सो देयर यू आर मैन आई मीन माई अपोलॉजीज आई मीन दिस मंथ आई मीन वेरी अनयूजल आई मीन वेरी आई वुड से अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ मी। बिल्कुल मेरी तरह ऐसा नहीं है। मैंने 4 छुट्टियां की हैं। सुबह बेगम साहबा को भी मैं ये बात बता रहा था कि इस बार जो है वो दिहाड़ी में बड़ी कटौती होने वाली है लेकिन खैर चलें जी अल्लाह ताला है अपने साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @adil_azhar पर @adil_azhar। वैसे इट्स बीन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची। वैसे अभी मेरे ख्याल से अगर अब तक धूप ना निकल गई हो तो अगले 5-10 मिनट में शदीद धूप निकल आएगी लेकिन जो सुबह का आगाज़ था वो डॉन और वो प्री डॉन का टाइम प्री डॉन एंड देन डॉन का टाइम एंड देन उसके बाद तुलू आफ्ताब का वक्त उस वक्त का कुछ अच्छे बादल छाए हुए थे दैट टिपिकल समर्स मॉर्निंग हियर इन कराची विंडी डार्क क्लाउड्स वो ज़्यादा एक्साइट करने वाले क्लाउड नहीं होते वो चाइना के क्लाउड होते हैं आपको पता है कि अभी हवा के साथ चले जाएंगे। But it was very nice and beautiful indeed. I really miss अपने पार्क जाने को बड़ा मिस कर रहा हूँ वैसे इस रमज़ान में और हर रमज़ान में होता है ये लेकिन खैर रमज़ान की अपनी भी खूबसूरती होती है। चलें जी प्रोग्राम में @adil_azhar आप लोगों के मैसेजेस यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। आज का पहला मैसेज हमारे पास आया मंजूर अहमद भट्ट साहब का, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज भी आपके दोस्त जो हैं वो साहिल अहमद मीर और आकिब रशीद ठाकुर साहब मौजूद हैं जी। वैसे सर माशाल्लाह आप इतना तारुफ करा चुके हैं अब तक हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये दोनों फॉरएवर नामी कंपनी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी नेक तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात आपके इन दोस्तों के लिए। नजम साहब वालेकुम अस्सलाम सुबह बखैर आपको भी। एंड देन HM फैसल खान साहब थैंक यू ब्यूटीफुल वेदर हेयर इन भावलपुर। विल यूरोपियन सुपर लीग प्लेयर्स रियली विल दे बी बैंड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। वेल आज प्रोग्राम में ज़रा तफसील से हम नज़र डालेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर जिसमें यूरोपियन सुपर लीग का जिक्र हम कर सकते हैं थोड़ी तफसील के साथ। थोड़ा अगर जिन लोग अब तक ना पता हो उनको इसका तारुफ भी करा देंगे एंड या एक दो और टॉपिक्स हैं ज़रा उस पर हम बात करेंगे आज सुबह से क्योंकि अलग सुबह से काफ़ी सुबह से मैं उठा हुआ हूँ सहरी से काफ़ी देर पहले से। सो आई बिन रीडिंग अ लॉट दिस मॉर्निंग सो आई थॉट आई शेयर विद यू गाइस। थोड़ा आप लोग के साथ आगे चल के शेयर भी करेंगे। पीर जहीर साहब थैंक यू सो मच कहते हैं जी गवर्नमेंट इज अग्रीड टू TLP's डिमांड। ओ यस एब्सोल्यूटली नो धरना नाउ यू आर राइट लेकिन जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट हैज़ कैपिचुलेटेड मुकम्मल तौर से जैसे कहते हैं ना बिल्कुल अपने घुटनों पे आ गए। यानी क्या बड़े बड़े बबांगे दोहल दावे किए जा रहे थे ये हो जाएगा ये दहशतगर्दों के आगे इन शरपसंदों के आगे हमें झुकना नहीं है लेकिन खैर एनीवे आज सुबह जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और जी आज हमारी पार्लियामेंट में करारदाद भी आ रही है फ्रांस के सफीर को बाहर निकालने के लिए। और अगर वाकई ये करारदाद पास हो जाती है और फ्रांस का सफीर पाकिस्तान से बाहर हो जाता है तो उसका बाद क्या हाल होने वाला है अब मैं क्या कह सकता हूँ जी इसको। बट बहरहाल चलें जी सारे ये आपको अंदाज़ा हुआ कि इनके ये ढकोसले थे और इस वक्त जो है हमारी हुकूमत के अब क्या कह सकते हैं इन लोगों के हवाले से। चलें फजल फैजी साहब थैंक यू सो मच सर कहते हैं आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली बिजी इन योर जॉब सिंस यस्टरडे एज यू वर नॉट सीन ऑन ट्विटर टू। नो नॉट रियली एक्चुअली सर। अच्छा आई थॉट आई वाज ऑन ट्विटर। हाँ ट्वीट ज़रा कल कर रमज़ान में ज़रा थोड़ा सा सिचुएशन सहरी के बाद सॉरी अफ्तारी के बाद रमज़ान में ज़रा ट्वीट्स में तेज़ी आती है वरना उसके बाद तो वाकई ऑफिस का टाइम ज़रा कम होता है वो टाइम गुजर जाता है जल्दी से एंड देन फिर उसके बाद घर आके जल्दी होती है आपको क्या कि आप सो जाएँ और वो वाकई कोई ट्वीट करने का टाइम भी नहीं, कोई मौका भी नहीं. बहरहाल जवाद जमीर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू तहसीन अमजद साहब का भी यही कहना है, हसनैन आला साहब थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी, कल आपका ट्वीट बड़ा कामयाब रहा, आपने देखा माशाल्लाह उस पर कितने हसनैन साहब रीट्वीट्स और लाइक्स जो हैं वो उस पर आए. अफजल खान साहब पूछते हैं भाई आज आपका शो होगा, हुजूर वाला शो होगा और यहाँ पर हम मौजूद हैं आपके लिए. इरफान मलिक साहब कहते हैं शुक्र है भाई आप आ गए, थैंक यू सो मच. एंड देन पीर सईद साहब कहते हैं हाफिज उस्मान इज विद अस, इनको आज तरावी पढ़ाना है, ही इज इंजीनियर एंड ही ऑल्सो परफॉर्म्स नमाज तरावी. क्या बात है जी, माशाल्लाह जबरदस्त इंजीनियर हाफिज उस्मान साहब को भी हमारी तरफ से सलाम. जिसके अलावा मोहसिन अकबर साहब कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग अदील भाई, होप एवरीथिंग वेंट वेल यस्टरडे थ्रू आउट पाकिस्तान, एवरीथिंग वेंट वेल एक्चुअली, एवरीथिंग वाज प्रीटी ओके. अच्छा कल मैंने यही बात बोली ना, ये व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क पे एतबार ना करें यार. वैसे इस व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क ने बहुत कल मुझे वाकई सीरियसली जो मुझे असल धोखा हुआ है ना वो कल व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क से हुआ है. वो पता है लोग पुराने ट्वीट्स पे से वाकई सीरियसली यार. अच्छा मैं ना इसको अब मजाक समझ ही नहीं रहा बिल्कुल इस चीज़ को ना कि यार इंडियंस इसमें इन्वॉल्व हुए हैं. इंडियन है यार, साइबर वॉरफेयर एक चीज़ है, फिफ्थ जनरेशन वॉर अगर आप इस पर अभी भी बिलीव नहीं करते. बाकायदा यूनिट्स हैं जो है जो कि मुल्कों के लिए फाइट कर रहे हैं. मसलन ये कि अभी एक ट्वीट आया हुआ है मिस्टर उसामा बिन लादन, नहीं उसामा बिन आदिल का. ये अब ये क्या लिखा हुआ है देखें, ये मेरे पास नहीं आया, ये एक ऐसी ट्वीट आया हुआ है, लिखा वी स्टैंड विद टीएलपी, इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी, किक आउट फ्रांस एम्बेसडर, पाकिस्तान जिंदाबाद. अब आप जो है ना वो सोच सकते हैं कि ये ट्वीट्स कहाँ से हो रहे हैं. सो यही जो है ना, इस तरह मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि यही व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क के थ्रू WNN के थ्रू मेरे पास जो है वो मैसेज आना शुरू हुए कि यार ये सुबह ये सड़क भी बंद, वहाँ पब्लिक निकल आई है, झड़पें हो रही हैं, पुरानी क्लिप्स आ रहे हैं, हम भी बेवकूफ़ बन के उस पर उड़ी. अच्छा पब्लिक को छुट्टी चाहिए, पब्लिक को ये यार ज़बरदस्त लॉन्ग वीकेंड मैन, इमेजिन मंडे को छुट्टी, लोगों ने भी बिलीव करना उस पर शुरू कर दिया. ओ भाई यार घर बेटर है यार, बैड बहुत सीन बहुत बैड होने वाला है. सो कल ना इस व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क ने मुझे फंसा दिया, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यार ज़रा इस बारे में ना एहतियात करें. तो खैर एनीवे चलें जी. अनीक अहमद साहब कहते हैं सर जी वर्डिक्ट एनी टाइम टाइट सिक्योरिटी, यस एब्सोल्युटली जी आपने बिल्कुल सही बात की है. जो जॉर्ज फ्लॉयड जो सियाह फाम अमरीकी को मिनियापोलिस में डेरेक शोवेन नामी एक पुलिसमैन ने जो है वो कत्ल किया था, उसमें एक वर्डिक्ट जो है वो आने वाला है और इस पर काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि सिक्योरिटी मिनियापोलिस नामी शहर में की गई है. बिकॉज अगर डेरेक शोवेन को जो है वो जो पुलिस वाला था उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है तो फिर सियाह फाम लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में निकल सकते हैं और उसको सज़ा दी जा सकती. अगर सज़ा दे दी जाती है तो हो सकता है कि सफ़ेद फाम इंतहा पसंद कुछ एक्शन में आ जाए. So yes, I think Americans are holding their breath and let's see what happens. Abdul Rauf साहब कहते हैं जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफार भी अमानतें महफूज थी उसी के फॉलोअर्स की वजह से मुसलमानों की अमलाक महफूज नहीं है. बहरहाल जी क्या कहा जा सकता है सर, बड़ा सोचने का मकाम है. जब भी इस तरह का कोई धरना होता है, तोड़ फोड़ होती है, आई थिंक हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का ये वक्त होता है कि बहसियत मुसलमान हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं. और पता नहीं यार, मैं तो खैर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता. फरुख सलीम साहब कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल क्लाउडी मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर. भाई क्या बात है, वैसे मुझे तो लग रहा है कि अब तक जो आप लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं तो लाहौर वालों को और इस्लामाबाद वालों को तो अब तक रोज़ा लगा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से. एक दिन उनको जो है ना वो रोज़ा नहीं लगा होगा, बिकॉज अब कभी कहीं बारिश हो रही है, कभी कहीं बूंदाबांदी हो रही है, बेहतरीन मौसम है. बल्कि मैं तो कल देख रहा था कि इस्लामाबाद में मिनिमम टेम्परेचर या 16 या 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो चल रहा था. सो मैन वाई सीरियसली मैन, दिस इज़ लाइक द फेबरी वेदर हेयर इन कराची. सो यू गाइज आर सो लकी, इन्जॉय योर रमज़ान. जैसे जैसे ज़ाहिर है साल गुजरते जा रहे हैं, रमज़ान अब सर्दी की जानब आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है. सो आप लोगों के तो रोज़े बड़े कराची में इट्स गोइंग टू टेक नेक्स्ट 5 years नाउ कि जब रमज़ान ऐसे टाइम पर आएगा जहाँ पर आप कहें कि वाकई यार आराम से रोज़े जो हैं वो गुजर रहे हैं. बट आई थिंक लाहौर इस्लामाबाद जहाँ का मौसम काफ़ी अब विंटर्स काफ़ी स्ट्रेच भी हो गए हैं और आई थिंक यू गाइज आर मस्ट बी हैविंग अ गुड टाइम. चले लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, that was Junoon with Mitti mein mil jayenge. What an emotional track that is. Aur Arshad Imam sahab, ittefaq ki baat hai. While I had played that song, I read this message that you had sent. Aur kafi afsosnak message hai. Aapke cousin Ali Saqib ka aap zikr kar rahe hain, who passed away last night in Dubai. He was just 39 and had COVID. the UK variant, and he left three daughters behind him, and that is very sad. Bahut afsos hua. Arshad sahab, hamari jo hai wo sympathies aapke saath hain. COVID is very dangerous, and it actually points out yet again hum sab kitne vulnerable hain is waqt, aur kitne zyada is waqt I would say we're walking on a thread right now. So Allah Ta'ala hum sabko, hamare khandan, ahle wayal, sabko, aas paas jitne log hain, mehfooz rakhe, ameen, summa ameen. All right, Muhammad Wahid ka message aaya, kehte hain, weather here in Bahawalpur is awesome. Challenge, bahut achhi baat hai. Iske alawa, Peer Zahir sahab kehte hain, Joe Biden ka sunao yaar, aajkal khamosh hai. Joe Biden ko dekhiye, us tarah khabron mein rehna aata nahi hai jis tarah Donald Trump sahab the. Donald Trump was a showman, okay? Usko pata tha ki mujhe agar khabron mein rehna hai to uske liye kya karna chahiye, because he was a self-obsessed narcissist jis tarah Modi hai India mein. So ab jahan tak inka taluq hai Mr. Joe Biden ka, so unhone filhal to unke hawale se unhone kya baat ki abhi recently कौन की बात मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ भाई पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया गया है क्लाइमेट समिट में, शायद पता चला हो आप लोगों को. और हुआ कुछ इस तरह का सीन है कि पाकिस्तान को इनिशियली ये तकरीबन 50 मुल्कों के लीडरान को जो है वो एक वर्चुअल समिट में इनवाइट किया था, और जिसके लिए जो है वो कंसेंसस बिल्डिंग के लिए, एजेंडा सेटिंग के लिए अमरीका के साबिक नायब सदर, साबिक वजीर खारजा जिम कैरी, नायब सदर तो नहीं थे जिम कैरी, हाँ वजीर खारजा जरूर रह चुके थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, एंड ही लॉस्ट टू बराक ओबामा ऑफ कोर्स. सो उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया था, ऑफ कोर्स ही डिड नॉट विजिट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान कल तक जो है वो इस क्लाइमेट समिट में जो है वो नहीं बुलाया गया था. जाहिर है ये बात याद रहे, ये जो जो बाइडन साहब हैं, जो क्लाइमेट है यानी माहौलियाती तब्दीली है, माहौलियाती तगैयुर है, ये इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, इनकी जो तरजीहात हैं, इसमें काफ़ी बुलंद जगह पर जो है ये मौजूद है. और इनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी, डेमोक्रेट जनरली बड़े माहौलियात जैसे कि माहौल दोस्त किस्म के लोग होते हैं जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की थी, ज़ाहिर इन्होंने बड़े बड़े वादे और अपने इरादों का इजहार किया था जो बाइडन साहब, और वो समझते हैं कि अमेरिका में क्योंकि अब कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो काफ़ी हद तक अमरीका जो है वो लिंक ब्रेक करने में कामयाब होता जा रहा है कोरोना के इन्फेक्शन और डेथ के दरमियान और मौत के दरमियान. सो इस वजह से अब वो दीगर चीज़ों पर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है. वी नो अबाउट द ईरान न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रही हैं, इसके अलावा ये जो इन्वायरमेंट के हवाले से दुनिया के बड़े मुल्कों को एक जगह पे ला के बिठाना और उनके साथ फिर बैठ के इस पर डिस्कशन करना, तो कल तक पाकिस्तान वॉजन इन्वाइटेड इन दैट. आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़ा माइंड किया था इस बात को और अफसोस भी किया था. सुनने में आया है कि अमरीकी सिफारतखाना पाकिस्तान में जो है वो इस पर कुछ एक्शन में आया, और फिर उन्होंने जो है वो अपनी तौर से कोई लॉबिंग की, और फिर पाकिस्तान हैज़ फाइनली बीन इनवाइटेड देयर, विच वेल फाइन, दैट्स ओके. आई मीन इट्स गुड टू बी इन द गुड कंपनी, ऑल द बिग बॉयज आर देयर, सो व्हाई शुडंट पाकिस्तान बी देयर, स्पेशली जब हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं टू माहौलियात, और इतने सारे दरख्त लगाए हैं पाकिस्तान में और सारा सिलसिला है. सो व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट हिम देयर, ही इज गोइंग टू बी देयर नाउ. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा आपको ये पता चला होगा कि यार इंडिया में कोरोना का केस काफ़ी बैड चल रहा है, और आपको पता है अभी मैंने जो बाइडन की बात की, उनके करीबी हलीफ अमरीका का बरतानिया है, और उनके वजीर आजम बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान आने वाले थे, कोई बहुत ही विशाल किस्म के ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अग्रीमेंट भारत के साथ वो साइन कर रहे हैं. आपको पता है कि अब ये जब से ब्रेक्सिट हो चुका है, यूरोपियन यूनियन से निकल गए, तो ये बहुत सारे मुल्कों के साथ जो है ये दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. इंडिया आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है, इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं, सम कंपनीज आर ह्यूज, दे आर मल्टी बिलियन डॉलर कंग्लोमरेट्स ऑपरेटिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड नाउ. सो ब्रिटेन को अपने तजारती ताल्लुकात इंडिया के साथ जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं उसको इम्प्रूव करना है, जिसके लिए वो यहाँ पर आ रहे थे बोरिस जॉनसन. लेकिन कल शाम उन्होंने ऐलान किया कि वो इंडिया कोरोना की बढ़ती हुई इस वबा के पेश नज़र नहीं आएंगे. इवन दो बरतानिया ने तो काफ़ी हद तक अपने कोरोना पे फिलहाल काबू पा लिया है ज़बरदस्त वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से, वहाँ के बारे में आप कह सकते हैं कि वाकई उन्होंने इन्फेक्शन और डेथ के दरमियान जो लिंक था उसको वो तोड़ने में कामयाब हो गए. नाउ द डेथ्स आर लिटरली इन डबल फिगर्स एंड इन डबल फिगर्स नाउ देयर, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, रिमेंबरिंग कि अब से कुछ अर्सा पहले वहाँ पे 1,000, 1,200, 1,300 लोग एक दिन में मर रहे थे, नाउ इट्स जस्ट लाइक 50, 60, 40, 30, मे बी लेस, आई डोंट नो, बट या. सो किसी को भी कभी वैक्सीनेशन पे शक हो तो आप जरा बर्तानिया की केस स्टडी उसको बता सकते हैं, हाउ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन रोल आउट इज हेल्पिंग कंट्री. सो बहरहाल बोरिस जॉनसन की बात करें तो नाउ इज नॉट गोइंग टू इंडिया. इसके अलावा इंडिया को रेड लिस्ट में भी डाल दिया है और यानी अब बर्तानिया ने काफ़ी सख्तियाँ लगा दी हैं हिंदुस्तान से आने वाले ट्रैवल्स की. ट्रैवल्स के जहाँ 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, जिसको आना है आ जाए यहाँ पे, बिकॉज उसके बाद इंडियंस कांट ट्रैवल एंड दोज विद द ब्रिटिश पासपोर्ट उनको 10 दिन का एक बहुत ही सख्त क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा, वो भी सरकारी होटल्स में और सरकार के ऑथोराइज होटल्स में. And people are going to pay for it. And it's pretty expensive. I was going through that. Anyway, अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पे नजर डालते हैं. हाँ वैसे अभी अभी खबरें जो उसमें कल रात की अलग सुबह की बड़ी खबर है, दैट इज नॉट देयर, लेकिन फिर भी अखबार तो वो आज के. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Welcome back guys, Samar Rise में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिल की आवाज़ आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर ज़रा नज़र डालते हैं. आज तकरीबन तमाम अखबार ने जो है वो इमरान खान साहब के कल का जो खिताब था कौम से, उसको अपनी लीड बनाया है. ज़ाहिर है ये खिताब इनका आउटडेटेड हो चुका है, बिकॉज इसके बाद डेवलपमेंट्स हुई हैं. आज रात गए अल सुबह जो है वो हुकूमत के TLP के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, जिसको हुकूमत खुदा जाने क्यों कामयाब करार दे रही है. इसमें कामयाबी सिर्फ और सिर्फ TLP को मिली है. हुकूमत ने तो बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक यू टर्न लिया है इस पूरे मामले में, और यहाँ तक वो अग्री कर गए हैं कि आज फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने के लिए बाकायदा एक कौमी असम्बली में एक करारदाद जो है वो पेश की जाएगी. है ना, जस्ट बिन थिंकिंग, अगर ये करारदाद पास हो जाती है सो फिर क्या होगा, बिकॉज आप जानते हैं कि वो मेंबरान नेशनल असेंबली के जो के फ्रांस के सफीर को ना निकालने का वोट करेंगे, उन पे तो मज़हब के फतवे लग जाएंगे. वल्ला आलम क्या होने वाला है, आप देखते हैं जी. कल इमरान खान साहब ने समझाने की भी यही कोशिश की कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने से नुकसान हमारा ही होगा. तहरीक लब्बैक और हमारा मकसद एक, लेकिन तरीका कार मुख्तलिफ है. मुस्लिम दुनिया मिलकर मगरिब को समझाए, उस मुहिम की क़यादत करूँगा. ओके जी, जंग ने अपनी लीड बनाई है, मकसद एक, तरीक़ा कार मुख्तलिफ. कल अदम तहरीक लब्बैक से हुरमत रसूल के लिए हिकमत अमली पर इख्तलाफ है. फ्रांस का सफीर निकालने से नुकसान उनका नहीं हमारा होगा. डॉन ने आज की लीड बनाई है. PM vows to lead drive against blasphemy. Hints government may not send back French ambassador. Alright जी, चलें आगे बढ़ते हैं. और दीनी जमातों की अपील पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल, लिखना है एक्सप्रेस का. मुजाहरे हुकूमत और कलंदन तंजीम में मुजाकरात, मुगवी अहलकार को अहलकारों को जो है वो रिहा कर दिया गया है. लाहौर, कराची, पिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में मार्केटें बंद. लाल हवेली के बाहर एहतजाज, नारे. वकला ने भी अदालती बॉयकॉट किया. हुकूमत फ्रांसीसी सफीर निकाले, ताजर रहनुमाओं का ये कहना है. जी, मुजाकरात के 3 दौर हुए. सफीर निकालने के लिए करारदाद लाने का मुतालबा. एहलकारों के बदले 2 से जायद रहनुमा रिहा किए गए, जराए का ये कहना है. ओके जी, इसके अलावा कौमी असम्बली लाहौर वाकये के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी. हुकूमत को फैशिस्ट करार दे दिया गया. ऐवान में नामों से रिसालत पर करारदाद पेश हुई, ना वजीर दाखिला ने पॉलिसी बयान दिया. स्पीकर पर शोर शराबे पर एहतजाज मुलतवी कर दिया गया. ओके जी, एंड देन क्या खबर है जी, भारत भी बरतानवी रेड लिस्ट में शामिल. बोरिस जॉनसन का दौरा मनसूख, एक्सप्रेस ने अपने सफाई अव्वल पे इसको जगह दी है. इसके अलावा एक्सप्रेस का ये भी लिखना है कि इमरान खान ईद से कबल या फौरी बाद सऊदी अरब का दौरा करेंगे. ठीक हो गया. शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया. यार ये तो बड़ी कोई गेम हो गई शहबाज शरीफ की, आपको पता है कि जमानत के ऊपर, बिकॉज पहले ये खबरें चल गई जी जमानत हो गई. फिर उसके बाद पता ये चला कि नहीं जी, ये 2 जजेस के दरमियान जब उन्होंने रिटर्न जजमेंट दिया तो फिर वो तो बिल्कुल 180 डिग्रीज एक दूसरे से अपार्ट बातें कर रहे हैं. एक कहते हैं जी जमानत दे दें, दूसरा कहता है कि जी मुझे नहीं पता कि ये जमानत की ये बात कहाँ से आ गई, मैं तो डिसेंटिंग नोटिस पे लिखना चाह रहा हूँ. सो बहरहाल अब ये जो है अब 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है, जो कि फिर से इस पूरे मामले की समाअत करेगा. और जस्टिस सरफराज डोगर हैं और जस्टिस अजद के दरमियान तहरीरी फैसले में अख्तिलाफ पर शहबाज शरीफ की जमानत इल्तवा का शिकार हुई. इस केस की समाअत जो है वो 21 अप्रैल यानी कल होगी. Alright, इसके अलावा टैक्स टैरिफ बढ़ाने पर IMF की फिर याद दहानी. आइंदा माली साल में GST और पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स का निफाज होना चाहिए. शौकत तरीन के साथ काम करने को तैयार हैं. IMF की मकामी सरबरा का वेबिनार में इजहार ख्याल. ओके जी, एंड देन क्या खबर है? नैब ने हमजा शहबाज की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है. ऑलराइट, इसके अलावा कोई और खबर? नैब वांट्स नवाज सीज्ड प्रॉपर्टीज ऑक्शन, यानी नैब चाहती है कि नवाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने, जिनको नैब ने सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था, उनको ऑक्शन कर दिया जाए, यानी उनको नीलाम कर दिया जाए. लेट्स सी अकाउंटेबिलिटी कोड उनको इसकी इजाजत देती है नहीं. बहरहाल जी, टाइम चेक, न्यूज हेडलाइंस, कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, हम आर राइज में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं. दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून इन किया. 8:11 हो चुके हैं. या काफी लंबा ये वाला ब्रेक था, लेकिन बहरहाल गुड थिंग इज दैट वी आर बैक. ठीक है, बातें करेंगे फिर, आज बातें करते रहेंगे प्रोग्राम में आगे तक. अच्छा, खेलों में आज जो है ना, क्रिकेट में कोई खास बात करने को नहीं है. वी नो दैट पाकिस्तान टीम इज इन जिम्बाब्वे राइट नाउ, और जिम्बाब्वे में पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ सीरीज का आगाज करने वाला है. इस सीरीज में T20 मैचेस भी हैं और इसमें जो है वो टेस्ट मैचेस भी हैं. इसमें पहला T20 मैच जो है वो कल खेला जाएगा, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैचेस जो हैं ये दोपहर को 2 बजे इनका आगाज होना है. जी याद रहे, इस सीरीज में पाकिस्तान के 3 T20 मैचेस पाकिस्तान को खेलने हैं और 2 टेस्ट मैचेस होंगे. और ये टेस्ट मैच की जो सीरीज है 29 अप्रैल को इसका आगाज होगा. दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 7 मई को खेला जाएगा. ख्याल ये निस्बतन आसान सीरीज पाकिस्तान के लिए होगी, बट जिम्बाब्वे की टीम में कुछ उनके सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो वापस आए हैं, जिसमें ब्रेंडन टेलर शामिल हैं और क्रेग अरवन शामिल हैं. और अच्छी बात है जी, थोड़ा थोड़ा सा मुकाबला ज़रूर होगा, बिकॉज पाकिस्तान टीम भी आपको पता है कि बिल्कुल टीम के लेवल पे आगे फाइट करती है. तो जिम्बाब्वे अगर थोड़ी सी टीम मजबूत कर लेगी अपनी, तो फिर यू नेवर नो, दे मे हैव अ चांस, एटलीस्ट दे कैन विन वन ऑफ द गेम्स. अच्छा जी, पाकिस्तान टीम की जहाँ तक बात है, तो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच वकार यूनुस टीम के साथ जिम्बाब्वे में नहीं होंगे, बिकॉज उन्होंने कहा है कि जी वो ऑस्ट्रेलिया वापस जाना चाहते हैं, जहाँ पे उनकी अहलिया की सर्जरी होनी है. और अभी जो है वो बेसिकली उनको ऑस्ट्रेलिया से वापसी का खसूसी इजाज़तनामा मिल गया, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना किसी और मुल्क से इतना ज़्यादा आसान जो है वो नहीं है. अच्छा जी, जबकि उनकी अहलिया की सर्जरी क्योंकि ईद के बाद होनी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड उनको कंप्लीट करना होगा, जिसकी वजह से इनको अभी टीम को छोड़ के जाना है. अच्छा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वकार यूनुस जो है वो पाकिस्तान टीम को बीच दौरे में छोड़ के जा रहे हैं. सो पहले भी इनकी कुछ फैमिली वजूहत थी, ही वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, बट दिस टाइम आई थिंक द मैटर लुक्स मोर सीरियस. अल्लाह सबको खैर व आफियत दे, आमीन सुमा आमीन. चलें जी, अब बात करते हैं जरा फुटबॉल के हवाले से. भाई फुटबॉल की दुनिया में तो, स्पेशली यूरोपियन फुटबॉल की दुनिया में तो भूचाल सा आ गया, और वो भूचाल कुछ इस तरह का आ गया है कि एक नई लीग आ रही है जिसका नाम है यूरोपियन सुपर लीग के नाम से एक लीग आ रही है, और यूरोप के कोई 12 बड़े क्लब जो हैं वो ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुके हैं. ये 12 क्लब जो कि इसमें शामिल हुए हैं, जाहिर है ये यूरोप के चंद बड़े नाम हैं. और अगर आप फुटबॉल को, यूरोपियन फुटबॉल को ख़ास तौर से फॉलो करते हैं, सो फिर आपकी नॉलेज में ये बात होगी कि ये क्लब, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के तो सारे ही बड़े क्लब अगर आप देख लें, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल डिफेंडिंग चैम्पियन, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो चैम्पियन अब बनने वाला है, आर्सनल हो गया, इसके अलावा चेल्सी, एंड देन वी हैव गॉट टॉटनहम हॉटस्पर्स. सो ये जो क्लब्स हैं इन्होंने कह दिया है कि जी ये तो इंग्लिश, अब ये यूएफा चैम्पियंस लीग नहीं खेलेंगे. अच्छा, मेरे प्रोग्राम में आप सुनते हैं कि अक्सर मिड वीक में मैं चैम्पियंस लीग के मैचेस का जिक्र कर रहा होता हूं, बिकॉज, और मैं हमेशा कहता हूं कि यूरोप की सबसे बड़ी ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट ये होता है, जिसे यूरोपिया यूएफा चैम्पियंस लीग कहा जाता है. और इसमें यूरोप के ममालिक के टॉप क्लब्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं. बड़ा कंपेरेटिव मज़ेदार टूर्नामेंट होता है, एंड टीम्स अपने लिए बड़ा प्रिविलेज समझते हैं इस टूर्नामेंट में खेलते रहना. अब इन टीमों ने ये कहा है कि जी वो चैंपियंस लीग में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि वो सुपर लीग में हिस्सा लेंगे. नाउ दिस इज़ अ ब्रेक अवे टूर्नामेंट, और ये यूरोप के अमीर तरीन क्लब्स हैं जो कि मिलके जिन्होंने ये सुपर लीग बनाई है. 20 टीमें इसमें होनी हैं, 12 हो गई हैं, तीन टीमें जिसको इन्होंने दावत दी थी वो जो कि अभी तक इसमें शामिल नहीं है, जो के बारे में ख्याल था कि वो शामिल हो जाएंगी, उसमें जर्मनी की दो टीमें जिसमें बायर्न म्यूनिख और बोरुशिया डॉर्टमुंड, और इसके अलावा फ्रांस का क्लब जो है पेरिस सेंट जर्मैन पीएसजी, उनके बारे में भी ख्याल था कि वो भी इस लीग को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बहरहाल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मना कर दिया, दे डोंट वांट टू ज्वाइन दिस लीग। इससे क्या हो गया, एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई, एक बहुत बड़ा स्प्लिट हो गया है दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल, आप कह सकते हैं सबसे मकबूल जो फुटबॉल की कॉन्फेडरेशन है, यानी कि यूएफा, यूरोपियन फुटबॉल के जो कंट्रीज हैं। अब इसमें जो है ना वो, क्योंकि ये एक तरह की ब्रेकअवे लीग है, तो इसमें यूएफा बहुत गुस्से में है, यूएफा भी गुस्से में, और यूएफा क्योंकि जाहिर है दे आर एफिलिएटेड विद फीफा, जो कि इंटरनेशनल यानी आलमी फुटबॉल देख रहा होता है। सो उन्होंने जो है ना धमकियां देनी शुरू कर दी, और धमकियां उन्होंने देनी शुरू की हैं कि तुम लोग फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाओगे, यानी तुम्हारे जो प्लेयर्स तुम्हारे क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्टेड होंगे दे विल नॉट बी एबल टू प्ले इन द फीफा वर्ल्ड कप। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुल्की लीग, अच्छा अब ये जैसे प्रीमियर लीग है, प्रीमियर लीग ने कहा है कि भाई ये छः क्लब्स तो अब नहीं खेलेंगे प्रीमियर लीग में। नाउ दिस इज इवन हार्ड टू इवन थिंक ऑफ के यार ये खिलाड़ी, ये क्लब्स जो के हु मेक अप लाइक द रियल लाइफ ऑफ प्रीमियर लीग, व्हाट प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट, ये उनके टॉप क्लब्स हैं, ये अब प्रीमियर लीग में नहीं खेल रहे होंगे, बिकॉज प्रीमियर लीग ने कहा है कि अगर तुम ब्रेक अवे लीग में शामिल हो जाओगे देन वी डोंट नीड यू। सो क्लब्स लाइक लेस्टर एंड क्लब्स लाइक वेस्ट हैम एंड क्लब लाइक ये जो क्लर्कल जो हैं आपके लीड्स यूनाइटेड, दे आर प्लेइंग रियली वेल, सो दे विल मेक अप द प्रीमियर लीग, उससे प्रीमियर लीग कहाँ जाएगी आप सोच सकते हैं। सो एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई, और दरार इस लेवल की पड़ गई है कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक की हुकूमतें अब ये कह रही हैं कि हम इस मामले में इंटरवीन करेंगे, वी रियली कांट लेट दैट हैपन। कल बोरिस जॉनसन बरतानिया के वजीर आजम का बयान आ गया है जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि जी वो इस पूरे मामले को देखेंगे, ही विल इंटरवीन दिस और ही विल मेक श्योर, वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रेक अवे लीग बन रही है ये ना बने। वो क्या चीज मोटिवेट कर रही है इन बड़े क्लब्स को इस ब्रेक अवे लीग बनाने के लिए, येप यू गेस्ट इट राइट, इट वॉज जस्ट पैसा, ये सिर्फ दौलत थी, दौलत की चमक थी जो कि इनको यहां से लेकर अब इस सुपर लीग पे लेकर आ रही है। यूरोपियन फुटबॉल शायद, आई मीन परहैप्स दिस इज द लास्ट सीजन, आई मीन वी हैव ऑलरेडी सीन द लास्ट सीजन नाउ, मेरे ख्याल से आखिरी सीजन हम पिछले साल देख चुके, बिकॉज अब तो ये टीमें यूरोपा यूएफा कप और ये सारी बातें हम पिछले वीक बात कर रहे थे इन सारी चीज़ों की, कि आर्सेनल जो है स्पार्टा वो उस फ्राक को हरा के जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गए, और चार इंग्लिश क्लब पहुंच गए हैं चैंपियंस लीग और यूएफा यूरोपा लीग के फाइनल में, यूरोपा कप के फाइनल में, एंड दिस इज ऑल यूजलेस नाउ बिकॉज वहाँ तो एक बिल्कुल अलग लीग बन गई है, एंड दे विल नॉट बी प्लेइंग इन दैट टूर्नामेंट। सो आई वुड से वेरी सैड न्यूज, आई मीन एज अ फुटबॉल फैन आई वॉज शॉक्ड, आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट दिस लीग जिसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो ये है कि आप कितने अमीर क्लब हैं, रादर देन आप मेहनत करके अर्न करके क्वालिफाई करके आते हैं। द मैनेजर्स आर नॉट हैप्पी, द फैंस आर नॉट हैप्पी, नॉट श्योर अबाउट द प्लेयर्स, बट क्लब ओनर्स आर हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, काफ़ी पैसा उनका बनना वाला है इस लीग के थ्रू। सो या लेट्स सी ये स्टोरी किस तरह इस वीक जो है वो डेवलप होती है। अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, Samar Rice में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, दिल की आवाज आप तक पहुंची है। गुड मॉर्निंग, इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, 8:23 अभी हो गया बिल्कुल, एंड या वेल थैंक यू, जल्दी से आप लोग के मैसेज एक्नॉलेज करूं प्रोग्राम में मैं, एंड देन वी हैव गॉट डॉक्टर शैला अकील, अस्सलाम वालेकुम कहती हैं, वेलकम गुड मॉर्निंग टू समा फैमिली, दैट इज ग्रेट। फरहान रजा ने कुछ कलाम याद किए हैं और कहते हैं कि जी बड़े मिस करते हैं वो ये कलाम, और मैंने बिल्कुल जी मैं भी अग्री करता हूँ, मैं बड़ा मिस करता हूँ वो जो कलाम हम चला जाकर, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के गाने जब थे, आजकल बर्फ़ पिघल रही है, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब तो वापस आ गए हैं, लेकिन कहते हैं जी सीक्रेट में कोई हो सकता है मुलाकात भी हो गई हो, कुछ उसके बारे में खुल के बात सामने नहीं आ रही, बट ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर हमें अगले कुछ दिनों में पता जाएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब जो वहाँ पर मौजूद थे दोनों यूएई में, क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर बैकग्राउंड में कोई वाकई सीक्रेट में इन दोनों के दरमियान कुछ मीटिंग हो गई, आने वाले दिनों में ज़ाहिर है हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। उस्मान रिजवान कहते हैं बड़े क्लब का नाम लिया और टॉटनम का नाम ले लिया आपने, वैसे वाकई खैर टॉटनम 1963 में आखिरी बार जो है वो टॉप फ्लाइट टूर्नामेंट उन्होंने कोई जीता था, लेकिन यार मैं अभी पिछले एक दिन में जरा यूरोपियन क्लब्स के बारे में इतना मैंने पढ़ा, मीन आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू नो दैट टॉटनम एक्चुअली मेक्स मोर मनी देन आर्सेनल नाउ, सो That's pretty sad actually for me. But they're highly indebted club. आपको पता है काफी कर्जा है उनके ऊपर because of the stadium that they recently built. Something that Arsenal faced अब से को तकरीबन 12-15 साल पहले की बात है. Dr. Seemal, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई कहती हैं. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? इसके अलावा मोहसिन अकबर कहते हैं अदील भाई if possible please discuss the whole new development in काजी फाइज ईसा केस. यार देखो ईमानदारी की बात है, काजी फाइज ईसा केस इसमें अब होल न्यू डेवलपमेंट क्या कह जा सकती है. लाइक वी ऑल नो दैट रिव्यू पिटिशन उनकी है जिसमें काजी फाइज ईसा खुद जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और काफ़ी तल्ख और तुंदो तेज किस्म के कलमात का जो है वो तबादला हो रहा होता है बिटवीन हिमसेल्फ एंड जो जज हैं, खासतौर से जस्टर उमर अता बंदियाल साहब जो हैं. कल तो उन्होंने एक मौके पे उनको शटअप कॉल भी दिया है कि अपनी आवाज़ नीचे रख के बात करें. आप अदालत आलिया में जो है वो इस वक्त खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के टॉप कोर्ट में जो है वो आप खड़े हुए हैं. ज़ाहिर है काजी फाइज ईसा साहब सब चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द मेन आर्ग्यूमेंट विच इज़ देयर. कल मैं देख रहा था कि वो उनकी बेगम साहिबा की तरफ से ये गुजारिश भी की गई है कि जी इमरान खान साहब की तमाम जो सबका वाइफ्स हैं उनकी भी मनी ट्रेल जो है वो चेक की जाए. मुझे नहीं पता ये व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क से ये खबर आई है कि वाकई उन्होंने जो है वो इस तरह की डिमांड की है. सो देर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर केस. जाहिर है हम ये जानते हैं कि ये केस सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से नहीं बल्कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से और उसके फ्यूचर के हवाले से इट्स गोइंग टू सेट द कोर्स. एक प्रेसिडेंस जो है वो ये सेट कर देगा कि आगे जजेस को जो है वो किन कसौटियों पर जो है वो परखा जाएगा उनके अपने पर्सनल कॉन्डक्ट और उनके अपने पर्सनल फाइनेंसिस के हवाले से. सो या वेरी इंटरेस्टिंग केस. जाहिर इसका फैसला तो खैर पिछले साल जून में ही आ गया था अगर आपको याद हो वो फैसला, जो शुरू में लोगों के समझ में नहीं आया था और बड़ी उसमें मिठाइयाँ बटी थी, लेकिन बाद में जब लोगों ने डिटेल फैसला डिटेल जजमेंट पढ़ी तो उनको समझ में आया कि यार ये तो मामला ही कुछ और डिस्कस हुआ है. अब ये मामला जो है वो जाहिर है नाउ दिस गोज रिव्यू में है. ये रिव्यू में आप जानते हैं आम तौर से रिव्यू इज जस्ट एन ऑप्शन, आई मीन एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि फैसले में अगर कानूनी लिहाज से कोई बहुत बड़ा नुक्स हो या कोई बहुत बड़ी उसमें ख़राबी हो तो वहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जाए या उसको कुछ देख लिया जाए. लेकिन आम तौर से हम ये जानते हैं कि रिव्यू में इस तरह के फैसले जो हैं वो वापस होते नहीं हैं या वो रिवर्स होते नहीं हैं या बट काजी फाइज ईसा साहब आपको पता है कि उन्होंने डिमांड किया था कि इसकी टेलीविजन पे लाइव कवरेज की जाए बिकॉज व्हाट ही वांट्स इज दैट ही इज एक्चुअली टर्निंग इट इनटू अ स्पेक्टिकल. वो इसको एक स्पेक्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं नेचुरली एंड बिकॉज ही वांट्स टू टेल पीपल दैट ही इज पुटिंग अप अ फाइट एंड इफ ही गोज डाउन ही वेंट डाउन फाइटिंग. दैट्स इज दिस दैट्स इज मोटिव और बट या वेरी इंटरेस्टिंग केस दिस एंड वी आर ऑल watching. शाहिद कबूल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, रोज आपका प्रोग्राम कराची में सुनता था, आज अपने गांव हेड पंजनद तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ में सुन रहा हूं. भाई क्या बात है, जबरदस्त पंजनद में प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा. थैंक यू मेरे भाई और अपने इस कयाम को जो है वो आप इंजॉय करें. अशरफ खान साहब शिकागो में प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग, गॉट वैक्सीनेटेड थ्रू फाइजर. That is great. Pfizer vaccine is doing really well. अच्छा कल मुझे ना एक डॉक्टर ने एक बड़ी परेशान कुन थी, उन्होंने मुझे बात बताई. मुझे नहीं पता ये किस हद तक ये बात सही है या गलत है, बल्कि उनका ये कहना है कि क्योंकि उनकी कम्युनिटी, ज़ाहिर है डॉक्टर जो मेडिकल हेल्थ केयर वाले कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उन्होंने उनमें से लॉट ऑफ पीपल आर कैचिंग जिनकी दोनों डोजेज लग चुके हैं उनको भी कोरोना हो रहा है. बल्कि जो मेरे ख्याल सबसे परेशान कुन बात इस पूरे हवाले सुनने में आई, मुझे नहीं पता, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये वैक्सीन लगवाने के बाद इन डॉक्टर्स ने थोड़े अरसे बाद जब अपने एंटीबॉडीज टेस्ट करवाए सो दे रियलाइज दैट देर आर नो एंटीबॉडीज देयर. वाओ, आई मीन सीरियसली मे बी देर इज सम टेक्निकल, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ है जो कि मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, बट अगर कोई इस तरह का सिलसिला है तो फिर तो यार ये तो फिर क्या हो रहा है. ये आई डोंट नो ये क्या सप्लाई चेन किसके थ्रू ये वैक्सीन यहाँ पर आ रही हैं, कहीं उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. लेकिन वाला आलम अल्लाह खैर करे. लेकिन जगह यार इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइज, वैक्सीन आर इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ ये कहना कि जी चाइना की वैक्सीन और फलाने मुल्क की तो रशियन वैक्सीन नहीं, जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और जो हो रही है वो ये यूएई के केस में हमने ये देखा है. बाय द वे यहाँ कल हमारे एक बरतानिया में मुकीम दोस्त जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे चाइनीज़ वैक्सीन को कि इट इज़ नॉट इफेक्टिव एंड ऑल. मैंने कहा नहीं, चाइनीज़ वैक्सीन आर लेस इफेक्टिव. ये कह देना कि दे आर नॉट इफेक्टिव इज रॉन्ग. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यूएई की एग्जाम्पल दी कि देखो यूएई में उस तरह केसेस में कमी नहीं हुई जिस तरह केसेस में कमी जो है वो आपने देखी है इन इन बर्तानिया. तो मैंने कहा यार यूएई में केसेस में कमी शायद आई थिंक द केसेस आर डाउन बाय 60% देयर. इट्स नॉट लाइक 5% और 10% नाउ जैसे कि बर्तानिया और अमरीका बर्तानिया में जैसे कि हो रहा है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द डेथ रेट द मोर्टैलिटी रेट इज सिग्निफिकेंटली डाउन. सो इस वैक्सीन का फ़ायदा ये हो रहा है. कल मैं डॉक्टर साद को भी सुन रहा था जो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं हमको ये जो येल यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में. तो वो यही बता रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ कोई सी भी वैक्सीन की आप ब्रांड उठा लें जो कर रही है वो ये कर रही है दैट इट इज़ कटिंग डाउन ऑन द मोर्टैलिटी रेट. ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है दैट इज सिग्निफिकेंटली गोइंग डाउन. वो शायद आपको कोरोना से उस तरह प्रोटेक्ट ना कर रही हो बिकॉज सी इन वैक्सीन की जो पोटेंसी है दैट इज 75% और मे बी 68% और 79%. दैट मीन्स 25%, 31%, 22% लोगों को कोरोना होगा. लेकिन वो जो सिवियर केसेस हैं उसमें बड़ी तेजी से जो है वो इन वैक्सीन की वजह से कमी आ रही है. बाय द वे वैक्सीनेशन का जहाँ तक हम जिक्र कर रहे हैं आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक हैं जिनको जो है वो इस वक्त ये सलाहियत ये कैपेबिलिटी हासिल है दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन वैक्सीन. बट देयर इज वन अपकमिंग कंट्री दैट इज गोइंग टू कहते हैं दैट इज गोइंग टू सरप्राइज द एंटायर वर्ल्ड अबाउट देयर वैक्सीन प्रोडक्शन. एंड कैन यू गेस विच कंट्री दैट इज. थोड़ा वेट करें मैं आपको भी बताता हूँ. It is supposed to work. I'm just saying it is supposed to work. मुझे भी कल जब एक डॉक्टर ने अपनी दोस्त की रुदात सुनाई तो मैं भी सुन के बड़ा हैरान हुआ. एंड आई सेड यार आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन. ये तो एंटीबॉडीज होनी चाहिए. Why that particular doctor did not have. So maybe she will go and get herself tested as well because I think उनके भी वो दोनों shots जो हैं वो लग चुके हैं. I just hope maybe it's just one of those cases. And Dr. Naushin also says that this may be one of those exceptional cases. And I really hope that this is one of those exceptional cases because agar aisa nahi hua to phir bahut dil toot jayega hamara. Acha ji iske ilawa Maryam Sheikh thank you so much and Rahman Khilji sahab kehte hain vaccines will vary in effect, not all will have the same number. Yes I agree the mortality rate are going yes I agree about the mortality rate, that means mortality rate going down and going through the agony will be less. I agree absolutely sir. Akhil Ahmed sahab kehte hain, I mean he's also a doctor, he says sir my colleague is positive but with mild symptoms and he got the second dose 25 days back, he's 50 years, so chale he has got like mild symptoms. I mean if he hadn't had that vaccine so we can at least assume ke ye symptoms itne mild jo hain wo nahi hote sir. ठीक हो गया यार अल्लाह बेहतर करेगा. चलें जी आप बढ़ते हैं. हाँ तो मैंने जाने से पहले सवाल पूछा था कि कौन सा मुल्क है दैट इज गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज रिगार्डिंग द वैक्सीन. आई मीन दे आर नॉट वो किसी चाइना की वैक्सीन को लाके अपने मुल्क में बनाने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वो अपनी ही इंडिजिनस एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच वैक्सीन जो हैं इंडिजिनस यानी अपने मुल्क में बनाई हुई वैक्सीन के जो है वो ट्रायल कर रहे हैं. बल्कि इसमें से दो वैक्सीन तो एडवांस ट्रायल की स्टेज पर आ गई हैं जिसमें से शायद तो कहते हैं कि जी वो एक या दो तो विद इन अ मंथ अप्रूव भी हो सकती है. मैं बात कर रहा हूँ क्यूबा की. यस आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों के जहन में कुछ कुछ तो नॉर्थ कोरिया होगा ना कि चेयरमैन किंग किम ने जो है वो एक अपनी बना ली होगी वैक्सीन कुछ कर ली होगी. लेकिन नहीं जोक्स अपार्ट क्यूबा व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ केयर प्रोफेशन व्हेन इट कम्स टू बायोटेक्नोलॉजी वैसे तो ये मुल्क बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी पीछे रह गया है बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट रूट्स. अभी भी कल भी एक खबर क्यूबा के बारे में आई थी कि वो जो राउल कैस्ट्रो हैं जो फिडेल कैस्ट्रो के भाई उन्होंने कहा है कि जी अब वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो रहे हैं. सो अपनी आज़ादी के पहली बार यानी कम्युनिज्म के आने के पहले, आई थिंक फर्स्ट टाइम सिंस 1959, द कैस्ट्रो फैमिली विल नॉट हैव एनीथिंग टू से इन रूलिंग क्यूबा. लेकिन फिडेल कैस्ट्रो ने जो है वो आज से 30 साल पहले क्यूबा में एक उनकी बायोटेक इंडस्ट्री की बुनियाद रखी थी. और उसका ऑब्जेक्टिव फिडेल कैस्ट्रो का यही था कि हम अपने मुल्क में जो है वो बनाएंगे इस तरह की वैक्सीन्स और मेडिसिन बनाएंगे, और ना सिर्फ हम अपने मुल्क के लोगों की जो है वो इस मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जो है वो इलाज करवा सकेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में स्पेशली जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको हम ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करेंगे सस्ते दामों में एंड स्टफ. मैंने आज तफसील में सुबह में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि यार दो तीन बीमारियां हैं, गालबन डेंगी की एक वैक्सीनेशन है जो सिर्फ क्यूबा बनाता है अभी फ़िलहाल, और क्यूबा ने काफ़ी दुनिया अफ्रीका में खासतौर से जहाँ पर डेंगी से बड़ी हलाकतें होती हैं वहाँ पर वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं. मैनेंजाइटिस की कोई किस्म है मेरे ख्याल से कि जिसकी कोई वैक्सीन, मैनेंजाइटिस थी कौन सी थी, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग गाइज, बट वो भी उसकी एक वैक्सीनेशन उन्होंने बनाई है या हेपेटाइटिस थी, वो क्यूबा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है. बट नाउ इस वक्त वो फुल थ्रॉटल पे काम कर रहे हैं अपनी वैक्सीन के लिए फॉर द कोरोना वायरस, बिकॉज दे न्यू कि ये बड़े अमीर ममालिक जो हैं ये हमारा नंबर नहीं आने देंगे और हम उनके सामने जो है ना वो कशकोल लेके खड़े नहीं रहेंगे, इसलिए वी हैव गॉट टू मेक थिंग्स ऑन आर ओन. उनके यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था जो कि फिडेल कैस्ट्रो जिसकी 30 साल पहले बुनियाद डाल के चले गए थे, जिसको वो अब लेवरेज कर रहे हैं. और ये बड़े पैमाने पर लोगों पर जो है ना इसके ट्रायल्स अभी इनके चल रहे हैं एक पर्टिकुलर वैक्सीन की, कोई बड़ा भला सा उन्होंने जहाँ उसका नाम उन्होंने रखा है Soberana 2, that's the name of that vaccine that they are actually trying. और कोई फिनले इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हवाना में जिसने ये इसके क्लिनिकल ट्रायल जो है वो ये कर रही है. सो या प्रीटी इंटरेस्टिंग. और इसके अलावा और कौन कौन सी, बेसिकली ये Soberana जो है ये इट्स अ स्पेनिश वर्ड फॉर सॉवरनिटी मतलब हाकमियत, उसके नाम पे उन्होंने अपनी ये वैक्सीन बनाई है. एक और है इनकी वैक्सीन जिसको ये टेस्ट कर रहे हैं, उसका नाम है अब्दाला, आफ्टर द नेम ऑफ अ पोएट, आई मीन अब्दुल्ला नाम ही होगा वैसे, ये स्पेनिश में ये नाम होता है बाय द वे. वन ऑफ माई फ्रेंड इज हिज नेम इज वितोर अब्दुल्ला बाय द वे, ही इज अ ब्राज़ीलियन. एनीवे इसके अलावा जो है द फिफ्थ वैक्सीन इज कॉल्ड Mambisa, which refers to the Cuban guerrillas who fought for freedom against the Spanish. So, yeah, very nice. Interesting. Kehte hain ki ye do vaccine, Soberana 2 and Abdallah, they are in the final phase of the third trial. Wo third trial jo ki aakhri hota hai. अब उसके वो रिजल्ट पब्लिश करेंगे एंड दे विल टॉक अबाउट कि उसमें कितनी एफिनिटी. अच्छा बाय द वे, जब पूरी दुनिया में इस वक्त क्यूबा में एक कोरोना ने अपना सर उठाया है, आई थिंक डेली बेसिस पे उनके यहाँ 1100 केसेस जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल जब पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ गए थे, क्यूबा में केसेस ना होने के बराबर थे. यस दे वेंट थ्रू लॉकडाउन, द इकोनॉमी इज इन डायर स्ट्रेट, काफ़ी मुश्किल में उनकी इकोनॉमी चल रही है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग कंट्री. आई मीन क्यूबा, यू जस्ट रीड अबाउट दैट. स्पेशली कभी भी आप देखें कि जी लैटिन अमेरिका में, दुनिया में जहाँ कहीं जलजले आते हैं, कुछ मसला होता है, डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, क्यूबा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो कि अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो दुनिया भर में भेज रहा होता है. पाकिस्तान में भी जब यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, सो नंबर ऑफ दीज क्यूबन डॉक्टर्स दे केम टू पाकिस्तान, दे स्पेंड सम टाइम देयर. सो इस तरह का ये सिलसिला जो है करते रहते हैं. आई मीन दैट्स वन क्वालिटी ऑफ दीज सोशलिस्ट कंट्रीज. बट या रियली होप, लेट्स सी, आई एम एक्चुअली वेटिंग, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड ये क्यूबा क्या अपनी वैक्सीन जो है वो लेकर आता है. सो इफ यू हैव टाइम टुडे, डू रीड अबाउट दैट. जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप क्यूबा वैक्सीन्स, दैट्स इट, देयर यू गो. अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की, जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, Samar Rise mein aapko ek baar phir se khush aamdeed kehte hain. Dil ki awaaz aap tak pahunch rahi hai. Of course is the last link of the show and bhai hamare bade regular listener hain Imran Amin sahab. Sir aapko bahut bahut mubarakbad, jinhone mashallah khushkhabri share ki hai ki Allah Taala has blessed him with a baby girl. Sir bahut mubarak ho, Allah Taala khush rakhe aapko aur bahut sari duaen aapke aur aapki puri family ke liye. Imran Shad वेलकम दिल भाई, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वेलकम किया. नहीं मैं, आई थिंक आई शुड बी द वन हु शुड बी वेलकमिंग यू गाइस यार. ओके जी, अनीस मुफ्ती साहब कहते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स रिलेटिव डाइड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ वैक्सीनेशन ड्यू टू कोरोना. दैट इज सरप्राइजिंग बट वेल इट्स नॉट 100% प्रोटेक्शन, वी नो दैट फॉर श्योर. अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट अमंग दोज जो कि प्रोटेक्टेड लोगों में से होंगे, दैट वेरी बहुत ही एक मिनिस्क्यूल सा नंबर होगा जाहिर है जिनके साथ बहरहाल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, इसको अल्लाह ताला बेहतर करे. आसिफ दिलदार साहब कहते हैं फ्यू पीपल आर कंफर्मिंग मी दैट कोरोना इज मैन मेड एंड दोस फ्यू पीपल आर स्टूपिड, डू यू नो दैट. छोड़ दें यार ये चक्करों में, ये इस भैंस से निकल आए कि कोरोना जो है वो मैन मेड है या कोरोना जो है वो ये फलाना इसने बनाया या ये कोई इजरायली या यहूदी साजिश का हिस्सा है. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं और व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क के जो हमारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं वो ये खबरें जो है ना वो एक्चुअली फॉरवर्ड कर रहे हैं वो उस चीज़ के हवाले से कि ये मैन मेड है, ये इसराइल बना रहा है, ये फलाना हो रहा है. वो बेचारे एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट है, उसके नाम से एक पोस्ट लगा दी थी कि आई कैन कन्फर्म दैट दिस इज़ इसराइली मेड वायरस. यार वो बेचारा परेशान है, कह रहा है मेरा नाम जो है ना वो क्यों इस्तेमाल हो रहा है एंड या बड़ी ज्यादा है. डॉक्टर ताबिश थैंक यू सो मच सर, उन्होंने बताया कि थैंक यू फॉर मेंशनिंग डॉक्टर साद, ही इज वन ऑफ द 12 मेंबर्स ऑफ WHO कमेटी ऑन ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी. और मैं आप लोगों को बल्कि थैंक यू सो मच डॉक्टर ताबिश, गुड टू नो दैट यू आर लिसनिंग. बल्कि मैं आप सब लिसनर्स को ये मैं दावत दूंगा कि कल वो डॉक्टर साद ने जो कामरान खान के शो में बात कर रहे थे राइट बिफोर 10 PM आप लोग जरूर सुने उनके बारे में, बिकॉज देयर आर सो मेनी मिथ्स अराउंड वैक्सीनेशन एंड बट द गुड थिंग इज दैट या हमारे घर में भी देयर आर रेजिस्टेंस आई कैन फील, बट माय अम्मी इज वेरी ओपन टूवर्ड्स. इनफैक्ट कल इंशाल्लाह उनका सेकंड डोज जो है वो भी उनकी वैक्सीनेशन का हो जाएगा, सो शी विल बी डन फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इंशाल्लाह. सो लेकिन या तो डू लिसन, अगर आपको टाइम मिले आप लोग जरूर, बल्कि मैं आई ट्राई टू शेयर द लिंक एज वेल. आई होप यू यू हैव शेयर्ड द यूट्यूब लिंक सो विच इज़ अ गुड थिंग, सो आई शेयर द लिंक एज वेल. डू वॉच दैट डॉक्टर साद हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद कामरान खान अबाउट द वैक्सीन्स, बिकॉज वैक्सीन्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं जॉनसन एंड जॉनसन्स की एंड देन वी नो अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका. सो रिमेंबर Having vaccine is better than having no vaccine at all. Just remember this. Sherry, thank you so much. Shiraz Iftikhar hain ji, Anjum Kiani sahab, thank you. Okay, Jadia, zara batate ye chalein ki bhai mubarak ho, abse takriban koi 1.5 mahine pehle humne ye zikr kiya tha ki NASA ne jab apna ek probe jo hai wo unhone land kiya tha nava bilkul Mars mein, to maine aapko bataya tha ki ji is NASA ne jo apna ye Mars mein yaar to musibat ho gayi hai, wahan pe jo apni ye probe land kiya hai उसमें एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है जी. उस हेलीकॉप्टर का नाम था इंजुनिटी और ये इंजुनिटी जो है इंजुनिटी इन्होंने कल अपनी पहली फ्लाइट जो है नासा ने ये बताया है कि कर ली है. नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी भी अर्थ से बाहर, जमीन से बाहर किसी भी जगह के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर उड़ाया गया है. अच्छा ये बहुत छोटा सा हेलीकॉप्टर है, कोई बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं है और ये कोई इतना भारी हेलीकॉप्टर भी नहीं था, लेकिन बहरहाल बाय डेफिनेशन दिस वाज अ हेलीकॉप्टर. ये परसिवियरेंस नामी एक प्रोब जो है वो नासा ने वहाँ पे भेजा था और उसने अपने हेलीकॉप्टर ने पहली फ्लाइट कर दी है एंड द पीपल ऑफ नासा, उनकी वीडियोस भी आई हैं, तस्वीरें दे आर ऑल्सो गोइंग वायरल एंड ऑल एंड यू कैन सी दैट दे आर हैविंग, आई मीन बिकॉज उनकी इतने साल की मेहनत जो है वो रंग ला रही है, सो दे कैन बी सीन सेलिब्रेटिंग देयर. एंड इन फैक्ट वन जेंटलमैन एट नासा he said that this was the Wright brothers moment on Mars. Wow, this is so amazing. Kya unhone analogy draw kiya, Wright brothers, you know Kitty Hawk, North Carolina, wahan pe unhone pehli baar ek jahaz udaya tha, jis form mein bhi tha, so yahan pe pehli baar ek helicopter jo hai ye udaya gaya hai. And this helicopter has got of course uske rotor blades and then it has got a solar panel jiske through wo charge ho rahi hai uski batteries and there are sensors, there are avionics and cameras and stuff and brilliant. कहाँ निकल रही है साइंस, कहाँ पहुंच गई है साइंस मैन, हम क्या कर रहे हैं यार, हम क्या कर रहे हैं, सोचा कभी आपने. बहरहाल जी गाइस वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द प्रोग्राम, इट वॉज गुड टू बी बैक ऑन एयर आफ्टर 3 days. सो इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से कल एक बार फिर होगी मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.